Dawa dates in quest of salvation. In a culture increasingly moving away from traditional morals and values, dating apps, blind dates, etc. are a fast-growing fad in the young generation. It can be difficult to reach up to these people with the message of Islam and make them realize that it's possible to find joy in something besides materialistic things. With all the pressures and temptations from movies, ads and days like Valentine's Day and other hallmarks of modern culture, they created an environment where it's viewed as more important to eat, drink, be merry and enjoy life rather than invest in the afterlife or take religious matters seriously. Nonetheless, knowingly and unknowingly, each person follows a spiritual calling with no rational backing, only if they knew. But there are people out there who are investing time and energy in living mindful life, being human and living life beyond the societal cult. Here comes the raw concept of Dawa dates. Of course, not to judge the concept by its name, what it is. Here, 2 to 3 people of the same gender can connect and meet at a cafeteria or restaurant and talk about essential matters of life, like our purpose in life, what drives us, and our Islamic values. It's often the case that we don't get ample opportunities to connect with the right people. We are all running on busy schedules which don't allow us enough space to be heard or share experiences with each other. Alas, we live in a broken world, and the truth is we are often left unsatisfied in searching for those deeper connections with one another. Everyday life has us going from place to place without stopping at all to take heed of our own values and purpose in life. Where could we turn? When prejudice and politics can prevent honest discussions about Islam, it's important to make an effort. If people are trapped in a cycle of suffering, oppression and sorrow, we owe it to them to let them know that answers may lie within the Islamic faith. But because of barriers like fear or misunderstanding, initiating those conversations can be difficult. Even if our attempts don't result in anything substantial, it can bring us closer together and promote understanding. In times of hardship, this is especially important. Open communication between strangers helps develop tolerance and adds to our collective experiences, and in longer run it can help build a sense of community. We can break free from the boundaries of our lives by meeting people who seek to make a difference. Unfortunately, at regular on-the-go Dawa meets for particular campaigns or on morning walks, far too few people are interested or available for genuine conversations. This means that these important talks are drowned out and lost in the noise. On social media, things have become even worse. We no longer consider the respect and empathy due between two human beings when making comments. Instigating arguments has become commonplace, and communication has been buried beneath toxicity and covert eyes. Sometimes we need to interact face to face if we are going to remember to treat each other with the dignity our souls deserve, even when we don't necessarily agree. Meeting in person is often a refreshing reminder of this truth. It sounds like a daunting task to be able to find someone with similar values and interests, but I believe it's possible. People are thirsty and going on retreats and whatnot in search for salvation and answers to life. To help facilitate this, one could create an app or a tie-up with restaurant which can ensure safety on both sides. We should also keep in mind necessary Islamic boundary lines and precautions to make sure that interactions fall under Parda norms and other stuff like that. This is our opportunity for social innovation, where we can use this initiative to strengthen our connection with others in this plural society. By creating these opportunities for invested and conscious interaction, we can multiply our chances of fostering harmony and reach closer towards salvation, getting closer to our Creator. In short, Dawa dates can be a convenient platform, especially for a group of youngsters to sit amicably and interact calmly over sensitive topics that are often shrugged under the carpet, often aimed at connecting individuals who seek answers to life, in quest of salvation, and on journey to discovering their passions and true purpose in life, interacting healthily and in fun way about Islam. Prophet Muhammad has said, "Convey my message to those who are not present." الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. اللہ رب العزت says that he created death first and then it's said کہ life پیدا کی. پہلے death non-existence تھا, اس کے بعد life پیدا ہوئی. Who has created death and life? Those who say that death is existing creation use this ayah as a proof, because it's something that has been created. There was nothing like death or life. Allah Rabbul Izzat created death and then life out of non-existence. So it means He brought creation into existence from nothing in order to test the creatures. He examines them to see which of them will be best in deeds. This is similar to Allah's statement, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum. How can you disbelieve in Allah, seeing that you were dead and He gave you life? So in the ayah, Allah named the first stage, which is non-existence, death. Then He named the origin or beginning of existence, life. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala says, Summa yumitukum, summa yuhikum. He'll give death, then again He'll bring to life. So concerning Allah's statements, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. He may test you of which of you is best in deeds. It means best in deeds. This is as Muhammad bin Ajlan say. It should be noted, Allah subhanahu wa ta'ala did not say which of you does the most deeds. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. And He is Almighty, All-Forgiving. This means He is the Almighty, the most great, the most powerful and the most honorable. How along with this, He is most forgiving to whoever turns to Him in repentance, seeks His pardon after having disobeyed Him, opposed His commandment. Even though Allah is Almighty, He also forgives and shows mercy and pardons and excuses. Teen cheeze. Ek to ye Allah Ta'ala farma rahe ki usne maut paida ki aur zindagi ko ijaad ki. Pehle maut paida ki aur phir zindagi ijaad ki. So it also implies that the way we were born the first time, we were non-existent, as if death was there. We didn't exist the first time, and then Allah created life. Allah gave us life. It also implies the creation of the universe. There was nothing. Allah created death and Allah created life. It also implies our first creation. We were non-existent. We were dead. Allah gave us life. And similarly, on the day of judgment, He'll give us death first, and then He'll resurrect us. He will grant us life again. To Allah Ta'ala pehle maut dega, uske baad zindagi ata karega. How beautiful it is. So death is not a thing to be feared of, to be afraid of. It's a culmination of test. It's the symbol, icon or indicator that the test is over. So first Allah Rabbul Izzat created that the limit, the duration or the indicators of end of test, and then He gave life. So it's not as if He has given us life and then we'll be getting death. No, first He has created death. Death is already there, and then after we have gotten life. So our terms, the exam terms, the testing period is already decided. It was even decided before we came into existence, because first it was decided and then life was given. So it's a thing we are unaware of, how much unaware we are, that we don't even know, we don't even realize this. And what if only we could realize this, ki death end time to decided hai, paper chhinne wala hai, and the moment it will be snatched, the time is over. It's destined, it's bound to happen, it will be there, and then this life has been given. And similarly, immediately, as soon as the paper is snatched, the new life will begin. So it's as if ki we are starting with this death and not with life. We usually start our lives with the day we were born, the day we are born, our birthdays. But if we could set the timer to that point where our papers will be snatched, our testing time will be over. So sometimes when we know the end, we can when we know the destination, we can realign our goals and milestones and the beginnings. And it's as if ki we have put the marker on that the day our paper will be snatched, we are preparing for that day. And as soon as the paper will be snatched, a new life will begin, based upon how we spent the entire life or the life that has been given by Allah Rabbul Izzat. So first he has given us death, we have nothing in our hands, we have zero entity in our hands, and then he has given something to us and said ki ye lo jao and perform something out of nothing. And you have nothing, you had nothing, I have given you something, and let's see what you can do. Let's see how and what you can do. So it's as if ki there is nothing, there was nothing, you didn't have an outer nor your life as well. Allah Rabbul Izzat gave you your life, your beauty, your organs, your family, your loved ones, your wealth, your talents, your skills, every ni'mat, every risk, every blessing that you're having, and the ones that you hook on to, the ones that you attach to, the ones that you think that it's so difficult to part with. And the thing is ki you were not having anything, Allah gave it to you and he said ki ye lekar jao and do whatever you want and I'll test you and let's see how you come out with the test. But hua ye ki as soon as we started on with the test, we forgot this, that we didn't have anything, we started with nothing, we started with zero. And it was this reality that we have nothing, we started with zero, we started with death, we started with non-existence, and we forget and we assume, we think that all we have is this life, and it's such a blessing, it's such a thing that we own it, we own our body, we own our whole life, we own our time, we own everything Allah Rabbul Izzat has given us, our loved ones, each and everything Allah Rabbul Izzat has given us on that day when he has assigned us death. He gave us these things and told us, do whatever you want, enjoy as well, but I'll test you, these are the things that I'll be testing you with. And it's simply that we forget and we think that we own them, and we dread death, we fear death, and we are running away from death, that which is already there, which we cannot escape, which was already there and it is bound to come. It is the first thing that has been created, and after that we have been given life and everything else. So death is a precursor, it was already there and it will be there. The timer is started, the matchstick has been lit, and the moment we'll be completing our test, from then onwards this death will mark a new start, a new beginning to the next life. Subhanallah. And how deviant we are. Dusri cheez jo Allah Taala yahan pe farma raha hai wo ye hai, allazi khalaqal mauta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, ki wahi hai jisne maut aur zindagi ko paida kiya taaki dekhe tumme se कौन बेहतर अमल करके आता है. लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करके आता है. ये नहीं कहा कि कौन ज़्यादा अमल करके आता है, हु डज़ द मोस्ट डीड्स, नो, कौन बेहतर अमल करके आता है. एवरीबडी इज़ डूइंग देयर वर्क, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बरतने को दी, लव, फंड्स, रिसोर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैज़ गिवन अस. नाउ तुम में से कौन बेहतर अमल करके आता है, तुम में से कौन बेहतर अमल करके आता है, तुम में से कौन बेहतर अमल करके आता है, लाइक हु आर द वंस हु आर डूइंग बेहतर अमल. बेस्ट अमल नहीं कहा, एक्सेलेंट नहीं कहा, बेहतर अमल इन कंपैरिजन टू व्हाट यू हैव बीन गिवन, और व्हाटएवर चैलेंजेस, द रिसोर्सेज भी दी गई है, चैलेंजेस भी दिए गए हैं, हर किसी की एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस है, उस बेसिस पे अल्लाह ताला इज़ गोइंग टू जज कि कौन बेहतर अमल करके आता है. ओके, नॉट परफेक्ट, यू वोंट बी लैंडिंग परफेक्टली, बट एटलीस्ट लेट्स सी कौन बेहतर अमल करके आता है, एटलीस्ट कौन एवरेज पे तो आ जाता है. ओके, सो नाउ वेयर डू यू स्टैंड, कौन बेहतर अमल करने करके आने वालों में. एंड फिर उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, ही इज़ अज़ीज़, बहुत ज़बरदस्त, ही इज़ ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, अल्लाह ज़बरदस्त है, ही इज़ लाइक, ही इज़ द ऑल माइटी, द मोस्ट ग्रेट, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट ऑनरेबल. हाउएवर अलोंग विद दिस, ही इज़ मोस्ट फॉरगिविंग. ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला अपने अज़ व जल में, अल्लाह ताला अज़ीज़ है, इज़्ज़त वाला है, जलाल वाला है, अल्लाह ताला इज़ ऑल पावरफुल, द मोस्ट मैग्निफिसेंट, अज़ीम शान हस्ती है उसकी. लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला इतनी इतनी इतना बड़ा होने के बावजूद अपना जबर या कहारियत या इस तरह ज़ोर नाफिस करे. नो नो, ही इज़ मोस्ट फॉरगिविंग टू हूएवर हु टर्न्स टू हिम इन रिपेंटेंस, हूएवर बीसीक्स हिम, whoever seeks his pardon after having disobeyed him and opposed his commandment, even though Allah is almighty, he also forgives, shows mercy and pardons and excuses. To ye Allah rabbul izzat ki shaan hai. Then Yusuf Ali says, he who created death and life, death is here put before life. Again wahi cheez hai, and it is created, ye cheez hai jisko create kiya gaya. Death is therefore not a merely negative state. Aisa nahi ki it's non-existent. It is an existing thing, death, jisko pehle paida kiya gaya. We read, seeing that we ye were without life and he gave you life, then we'll cause you to die and will again bring you to life and again to life. Again to him you'll be returned. Again death is put before life. That then is the state before life began. Life शुरू होने के पहले non-existence वाला state death है, लेकिन it's not a negative thing. It's an entity, an actual creation जो अल्लाह ने पैदा किया. Existence in some form, which may be non-existent or existent in some other form. Second, the state in which Allah, which life as we know it ceases. But existence does not cease. A state of barzakh. The state in which life as we know ceases. Existence does not cease. A state of barzakh. So how beautiful is this? Ki ek cheez ye hai. Ki jab kuch nahi tha Allah tha. Jab kuch nahi rahega, jab bhi Allah ta'ala rahega. Jab kuch nahi hai, tab bhi Allah hai. Jab kuch nahi rahega, Allah ta'ala. So it's like ki before we were born, we were non-existent. हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे मटीरियलिस्टिकली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लेकिन हमको पैदा किया था, हमारी रूहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पैदा किया, उसको जमा किया एंड उसको एक स्टेट में रखा, वी कैन ऑल्सो कॉल इट बरज़क. देन विद टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग्रांट्स अस लाइफ टू हुम एवर ही विल्स एट वट एवर टाइम्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स, देन वी केम, देन आवर चिल्ड्रन विल कम, आवर नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर. अभी बहुत सारी जनरेशन्स जो हम देख रहे हैं दैट वर नॉन एग्जिस्टेंट 10 years बिफोर, 5 years बिफोर, 2 years बिफोर, 1 year बिफोर, एंड दोज चिल्ड्रन हुआ 1 month, 2 month और वट एवर. ये सारे लोग एग्जिस्ट कर रहे थे बरज़ख में, इट्स सिंपली दैट दे वर डेस्टिन्ड टू बी देयर ऑन दिस अर्थ एंड नाउ दे आर देयर विद द सोल एंड लाइफ बॉडी. तो इट इज़ नॉट एज इफ के वो नहीं थे, कोई प्लानिंग नहीं थी, दे वे ऑलवेज देयर, बट उनका टाइमिंग यहाँ पे आया एंड दे आर हियर. सिमिलरली जो द लाइव्स, द सोल्स दैट आर मेंट टू बी हियर विल बी कमिंग ओवर हियर, हमारे जरिए से आना है या हमारे थ्रू आना है या हमको मिलना है, दे विल बी देयर. सिमिलरली देन कुछ नहीं थे, नॉन एग्जिस्टेंट थे, एग्जिस्टेंस में आ गए, बॉडी मिल गई, बॉडी को डेथ हो गई, बॉडी चले गई, एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस फॉर्म में आ गए, नॉन एग्जिस्टेंस इन द मेयरली फॉर्म ऑफ सोल, बरज़ख में थे दुनिया में आए, बरज़ख में चले गए. सो इट्स सिंपली दैट इट्स अ बैरियर और पार्टीशन आफ्टर आवर विजिबल डेथ बिफोर जजमेंट डे. आफ्टर दैट विल बी द न्यू लाइफ विच वी कंसीव ऑफ अंडर द टर्म इटर्निटी. ही हु क्रिएटेड दैट, सुबहान अल्लाह, एंड लाइफ दैट ही मे ट्राई विच ऑफ यू इज बेस्ट इन डीड. क्रिएशन देयरफॉर इज नॉट इन मियर स्पोर्ट और विदाउट पर्पज. किसी भी चीज़ को अबस पैदा नहीं किया विथ रेफरेंस टू मैन. द स्टेट बिफोर आर प्रेजेंट लाइफ और द स्टेट आफ्टर वी कैन स्केयर्सली अंडरस्टैंड, बट आवर प्रेजेंट लाइफ इज क्लियरली गिवन टू एनेबल अस टू स्ट्राइव बाय गुड डीड्स टू रीच अ नोबलर स्टेट एंड ही इज एग्जॉल्टेड. ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज अल्लाह इज सो एग्जॉल्टेड इन माइंड दैट ही कैन परफेक्टली कैरी आउट हिज विल एंड पर्पज, एंड दैट पर्पज इज लव, मर्सी एंड गुडनेस टू हिज क्रिएटर्स. द बेसिक पर्पज क्या है क्रिएशन का? अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त है. ही इज़ द एग्जॉल्टेड. ही कैन वेरी वेल कैरी आउट हिज परफेक्टली कैरी आउट हिज विल एंड पर्पज. वो अपना मकसद, वो अपना इज़्न बखूबी लागू कर सकता है. लेकिन अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है. ही लव्स टू सी हिज क्रिएशंस लविंग ईच अदर, केयरिंग फॉर ईच अदर, हैविंग मर्सी ऑन ईच अदर, being compassionate to each other and goodness to his creatures. Ma'ruf al-Quran, the reality of life and death, khalaq al-maut wal-hayata, the one who created death and life. Out of the human conditions, only two phenomena, life and death, are mentioned here because they cover all of human conditions and actions of his entire life. The creation of life is quite obvious because life is a positive reality. Sabko nazar aa raha. It can be the object of creation, bringing to existence. However, one may ask, how that can be created? While it's a negative state, negative concept that refers to a state of non-existence, the way electron and proton work, proton ka absence is the way electron and proton work. Electricity, the way electricity works. The absence of or the moving away of electron from one place to another creates a vacuum, a negative state, and that gives rise to electricity. Jahan electron move ho raha hai, jahan positive ki taraf move ho raha hai, wahan negative aa raha hai. Life thi, wahan death aa gayi. लाइफ थी वहाँ देता आ गई, लाइफ थी वहाँ देता आ गई, लाइफ है वहाँ देता आ गई. प्रोटॉन था वहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, प्रोटॉन था वहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, प्रोटॉन था वहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए. सो दिस कन्वर्जन, कंटिन्यूस कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव स्टेट इनटू अ नेगेटिव स्टेट बाय द रनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टन डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कॉल इट द रनिंग ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सिमिलरली व्हेन वी कैन, इफ़ वी कैन एनालाइज इट, इस एनालॉजी को हम अगर लगाते हैं कि द लाइफ एंड डेथ, लाइफ इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंटिटी, और वी कैन से इट्स एन एग्जिस्टिंग एंटिटी दैट वी थिंक इट्स देयर, एंड डेथ इज़ अ प्योरली नॉन एग्जिस्टेंट वन. लेकिन व्हेन डेथ इज फॉलोइंग लाइफ, डेथ is falling life, life, death, life, death, life, death, it's a running course. So this course is itself life, it's electricity kind of thing. So I don't know exactly how much this analogy is relating, like in it just appeared. How, one may ask, how that can be created? While it's a negative concept that refers to a state of non-existence. In answer to this question, the leading commentators have come up with different explanations. The most plausible one is that death is not a state of pure non-existence. It actually refers to removal of soul from body, its transfer from one place to another. So it's basically an entity, it's an act, jahan par koi non-existence nahi hai. Removal of soul from body and its transference from one place to another, it's an entity. Thus, it's a positive phenomena. Ek phenomena ho raha hai. Just as positive as life can be. Just as life is a phenomena that relates to human body, death too is a phenomena that overtakes him. Death there was nothing non-existent, and a baby is born, and we say it's a positive thing. जब baby born हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, तो simply it's not so positive as that. Simply there are transference of souls. कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने उसमें जान डाल दी, and he has come to this world. अब मरते वक्त क्या हो रहा है? When death strikes, सोल निकल के दूसरी तरफ जा रहा है, तो इट्स क्वाइट अ मिस्टिकल थिंग, इट्स क्वाइट अ मिस्टीरियस थिंग. ह्यूमंस एज ह्यूमंस वी चेरिश द बर्थ एंड डेथ स्टेट्स, एंड होना भी चाहिए. मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दो इंडिकेटर्स बनाए, दे क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स. किसी की बर्थ होना और किसी की डेथ होना, इट मीन्स देयर सोल, इट्स द ट्रांसफर ऑफ सोल्स. It's a thing, it's a phenomena, and life is a phenomena that relates to human body. That too is a phenomena that is related to human body. Sayyidina Abdullah ibn Abbas and other leading commentator have mentioned that life and death are two corporal entity. Death has a corporal shape of a ram and life that of a mare. This statement apparently interprets the authentic tradition, which states that when the inmates of paradise will have entered paradise and the inmates of hell will be a will have entered hell, death will be brought in the form of a ram and will be slaughtered near Sirat, the bridge. It will be announced that there shall be no more death. Everyone shall remain in the same state eternally as he or she will have attained. It may not necessarily be deduced from this tradition that death is a corporal entity in the mortal world also. There are many abstract condition actions in this world which we assume which will assume concrete shapes, bodies in the hereafter. This is verified by many authentic tradition. Death, which is a condition that overtakes man, will also assume the shape of a concretized ram and will be slaughtered. Ek dumbe ki shakal mein aayenge, Allah Taala usko bula kar qurban karenge, and that and then will be the time when there will be this time jahan se death khatam ho gayi hai hi nahi. और ये वाला जो कंसेप्ट है पेपर्स का, एग्जामिनेशन का, वो ख़त्म हो गया. नाउ देयर विल बी नो एग्ज़ाम. जो तुमने परफॉर्म करके है, बस अब उसी पर तुम्हारे मार्क्स है. तफसीर मज़हरी हैज़ स्टेटेड, ऑल्दो डेथ इज़ अ नेगेटिव फेनोमेना, इट्स नॉट प्योर नॉन एग्जिस्टेंस. इट इज़ अ स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस फॉर अ थिंग दैट विल कम, दैट विल एट सम टाइम कम इन टू एग्जिस्टेंस. All such non-existent things have shapes in the world of similitudes. Alimul Masdar, Alimul Misal, before creation, before coming into existence, realm of creation. Alimul Nasut, Alimul Nasut, Alimul Misal, मतलब non-existence बोलो या world of similitudes, before coming into existence, realm of creation. Alimul Nasut. Such non-existent things are called Al-Ayanul Sabita. On account of these shapes, they do have some sort of existence even before they come into perceived existence. They exist in the world of similitude. Alimul Misal has been proved by commentator through various ahadith, and Allah knows best. Various category of death and life. It's stated in Tafsir Al-Mazhari, Allah Rabbul Izzat with His supreme power, consummate wisdom, has divided His creation into different types. Each one is awarded life befitting its type. Har kisi ko Allah ne paida kiya alag alag surton mein, shaklon mein, types mein, right? Each one is awarded life befitting its type. Har kisi ko Allah ne zindagi kis hal mein di? Befitting its type. Usko jo behtareen suit kar raha hai uske hisab se, the perfect. Consummate life is awarded to man which has been invested with the capability to recognize the divine being and his attributes to a specific degree. Allah ne insaan ko bhi jo ek saakht mein, ek surat mein aur ek structure mein paida kiya, to it's as if ki he has that innate potential to recognize the divine being. Allah ki maarifat hasil karne ki usme qudrat rakh di, uski अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स को पहचानने की, उसकी सिफात हसना को पहचानने की अल्लाह ने एक क्वेस्ट रख दी इंसान में टू अ स्पेसिफिक डिग्री. इट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉग्निशन दैट ही इज मेड लायबल टू कैरी आउट द सेक्रेड लॉज ऑफ शरिया विच हैज़ बीन टर्म बाय कुरान एज अ ट्रस्ट. द हेवन्स द अर्थ एंड द माउंटेन्स फियर टू बेयर द बर्डन ऑफ दिस ट्रस्ट बट मैन ऑन अकाउंट ऑफ हिज गॉड गिवन कैपेबिलिटी बोर इट. द एंटोनिम ऑफ दिस टाइप ऑफ लाइफ इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेथ विच इज मेंशन इन द वर्स अवमान काना मैता फअहयैतना अहयैनाहु. कुड इट बी दैट द वन हु वाज डेड एंड वी गेव हिम लाइफ. इन दिस वर्स अ नॉन बिलीवर इज रेफर्ड टू एज डेथ एंड अ बिलीवर एज अ लाइफ. तो अल्लाह ताला तमसीलों से मिसालों से जो समझाते हैं, तो अगेन अल्लाह रब्बुल इज्जत यूजुअली डिस्क्राइब्स एन अनबिलीवर एज डेड एंड द बिलीवर एज अ लाइफ बिकॉज नॉन एग्जिस्टेंट वाला फेज है. जिस तरह जब हम पैदा नहीं हुए थे वी डिडंट नो कि हम पैदा नहीं हुए हैं और हम पैदा हो गए. वी आर बॉर्न वी ग्रो अप एंड देन वी रियलाइज कि अच्छा हम नहीं थे और हम जिंदगी में आए एंड यू नो अल्लाह ने जिंदगी दी और वी आर बॉर्न राइट. उसी तरह एक अनबिलीवर को नहीं पता कि वो डेड है. He is dead. He is not existing, unless and until he gets life. He gets iman. He gets guidance. Then only he'll realize ki wo life or death mein kya fark hai. Subhanallah. So because a non-believer has wasted his recognition of Allah, that was the essential characteristic of this type of life. Life ka matlab hi hai iman. So basically. Everybody is a zombie except those who are cognizant of Allah Rabbul Izzat, who are cognizant of Allah Almighty, who are cognizant, who are aware that Allah Rabbul Izzat exists, you know, Iman, and not only exists but who believe. So everybody is a zombie basically, and they don't know that they are zombies in a way ki jab wo realize karenge कि वो ईमान का मतलब क्या है. हाउ कम अ डेड पर्सन नो दैट ही इज डेड. हाउ कम एन स्लीपिंग पर्सन नो दैट ही इज अस्लीप. ओनली आफ्टर ही वेक्स अप ही इज एबल टू नो दैट ही वॉज स्लीपिंग. तब तक उसको पता ही नहीं चलता कि ही वॉज स्लीपिंग. सुभान अल्लाह. एंड देयरफॉर अ नॉन बिलीवर इज रेफर टू एज डेड एंड अ बिलीवर इज अलाइव बिकॉज अ नॉन बिलीवर हैज वेस्टेड हिज रिकॉग्निशन ऑफ अल्लाह. That was the essential characteristic of this type of life. In other type of species of creation, this quality of life is absent, but they do possess senses and capability of movement, which is the second category of life. तो life की ये अलग category जिसको हम बोलते हैं कि हाँ movement है और senses है वगैरह. That indicate life is there, हरकत है, stand still नहीं है, stillness नहीं है, जमूद नहीं है. Similarly, जब तक body में हरकत है, life है, जिंदगी है, you know the ups and the downs. The PQRS, ECG, तब तक life है. Similarly, the ups and the downs, the calamities, the dread, you know, everything, challenges and everything. ये show कर रहा है, indicate कर रहा है, life is there. The antonym of this degree of life is death, referred to by Quran thus, كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. You were lifeless and he gave you life. तुम बेजान थे और तुमको जान बख्शी. You were nothing and he gave you life. तुम कुछ भी नहीं थे और उसने ज़िंदगी दी कि तुमको पैदा किया, दुनिया में लाया. देन ही विल मेक यू डाई एंड देन यू देन मेक यू अलाइव अगेन. फिर तुमको ज़िंदगी अल्लाह ताला देगा. इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारे पास ईमान नहीं था, अल्लाह ने तुमको ज़िंदगी बख्शी ईमान से. और फिर उसका एनालॉजी का मतलब, मेटाफर का मतलब ये भी है कि फिर वो तुमको मौत देगा और फिर ज़िंदगी अता करेगा. तो It's a continuous process. In this context, life refers to ability to sense and move, and death refers to its cessation. Some of the existent entity do not even possess the ability of sensing movement. They merely possess the capability of growth, as in the case of trees or vegetables. Bas bade ja rahe, bade ja rahe, bade ja rahe, without any sense, without any movement, without mindfulness, without being conscious. Kya kar rahe? Bas kha rahe, pee rahe, bade hote ja rahe. जैसे ट्रीज वेजिटेबल्स या जानवर बड़े हो रहे उसी तरह ग्रो होते चले जा रहे. लाइफ का मतलब है लाइफ इज एट्रिब्यूटेड टू देम एज वेल इन अ लिमिटेड सेंस. ग्रोथ का मतलब लाइफ नहीं है कि सिर्फ बढ़ते चले जाना, पनपना, पिचुएट होना, इसका ही मतलब लाइफ नहीं है, या जिस तरह हम फर्टिलिटी को बोलते हैं लाइफ की, यू नो, टू ग्रो, टू एक्सपांड, टू पॉपुलेट, या पनपना, फैलना, या सिर्फ वेजिटेटिव तौर पर, या सिर्फ उसको ग्रोथ नहीं बोलते. इट्स अ वेरी लिमिटेड सेंस ऑफ द टर्म. कोई इंसान की हाइट कितनी ग्रो हुई है, वेट कितना ग्रो हुआ है, एज कितनी ग्रो हुई, इट्स अ वेरी लिमिटेड टर्म, लिमिटेड सेंस ऑफ ग्रोइंग. एज अपोज टू दिस, डेथ इज़ टू लूज एबिलिटी टू ग्रो. डेथ का मतलब है कि वहाँ पर स्टॉप लग गया. ओके, अब बॉडी ग्रो नहीं हो रही, सेल्स ग्रो नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, नथिंग इज चेंजिंग. इन दिस सेंस द होली कुरान हैज़ यूज द वर्ड लाइफ एंड डेथ इन द फॉलोइंग वर्स. यू हुयिल अर्ज़ा बादा मौता, हाँ मौती हाँ, हाउ ही ब्रिंग्स द डेड अर्थ बैक टू लाइफ. दीज डिग्रीज ऑफ लाइफ आर कन्फाइंड टू ह्यूमन काइंड, द एनिमल किंगडम एंड द वेजिटेबल किंगडम. नो अदर स्पीशीज ऑफ क्रिएशन पोजेस द क्वालिटीज ऑफ लाइफ. ये जो डिग्री है लाइफ की वो ह्यूमन काइंड को कन्फाइन है. उसने जिंदगी दी, ही ब्रिंग्स द डेड अर्थ बैक टू लाइफ. एनिमल किंगडम वेजिटेबल, नो अदर स्पीशी ऑफ क्रिएशन पोजेस दिस क्वालिटी. देयरफॉर आइडल मेड ऑफ स्टोन आर रेफर्ड टू एज अमवातु गैर अहया, डेड हैविंग नो लाइफ, उसके अंदर कोई जिंदगी नहीं है. Nonetheless, inorganic matter to have a special, though very limited element of life, which is necessary to the concept of existence. It's due to this element of life that the Holy Quran says, وَإِنْ أَمَانْ شَيْءٍ إِلَّا يُزْ بَهُ بِحَمْدِ. And there's not a single thing that does not extol his beauty and praise. ایسی کوئی شئے نہیں جو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان نہیں کرے. Each and every element, each and every entity that Allah رب العزت has created, each and every atom has that element of life, اور وہ اللہ رب العزت کی شان, اس کی پریز بیان کر رہا ہے. دس اینالس از آلسو ایکسپلین وائی دیتھ ان دا ابو ورس ہیز بین مینشن بفور لائف. دا ریزن سیمس ٹو بی دیٹ دیتھ اور نان ایگزسٹنس از اے اسٹیٹ دیٹ کمز بفور لائف. ان ادر ورڈ ایوری تھنگ دیٹ کیم ان ٹو ایگزسٹنس واز دا بگننگ ان اے اسٹیٹ آف لائف لیسنس اور نان ایگزسٹنس اینڈ اٹ واز اوارڈیڈ لائف. Another explanation of mentioning death before life could be that the verse itself has declared that the purpose of creating human death and life is test. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, so that he may test you, which of you is better in deeds. The test is more important and is of greater significance in death rather than in life, because the one who thinks of death constantly will have the tendency to do more and more and more of righteous deeds. Death ka significance life se zyada hai. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دا ون ہو از دا وائزسٹ, سب سے ہوشیار کون ہے, سب سے چالاک, سب سے عقل مند انسان, دانش مند انسان کون ہے, اینڈ دا کمپینین سب رائٹ, یو نو بیٹر, اینڈ اللہ رب العزت نو بیٹر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈیتھ کو کنٹینیوسلی یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے, دا ون ہو ریممبرز ڈیتھ آفن اینڈ پریپیئرز فار اٹ, ہی از اے موسٹ, کیونکہ اس کو ریالٹی پتہ چل گئی, اس کو ریئلٹی پتہ چل گئی کہ میری ریس اسٹارٹ کہاں سے ہوئی. میری ریس ہی اسٹارٹ ہو رہی ہے ڈیتھ سے, میری ریس برتھ سے اسٹارٹ نہیں ہو رہی, میری ریس ڈیتھ سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. دا ڈے آئی واز بورن از ناٹ دا ڈے آف مائی ایکچوئل ایگزسٹنس. آئی واز نتھنگ, فرسٹ اللہ رب العزت کریٹڈ ڈیتھ فار می. سب سے پہلے اس نے مجھے یہ پیپر دیا کہ پیپر کب چھننے والا ہے, وہ میرے ہاتھ میں آ گیا, اینڈ دا ٹائمر ہیز بن اسٹارٹڈ, میتھ اسٹک لٹ ہو گئی ہے, اینڈ اٹ ول کم ٹو این اینڈ, اینڈ ناؤ آفٹر دیٹ ہی ہیز گیون می ڈیتھ, آفٹر دیٹ ہی ہیز گیون می لائف. تو پہلے ڈیتھ دیا پھر لائف دیا, سو دیٹ ہی از ٹیسٹنگ اس. دا ون ہو تھنکس آف ڈیتھ کانسٹنٹلی ول ہیو ٹینڈنسی ٹو ڈو مور اینڈ مور رائچس ڈیڈز. نو ڈاؤٹ دا ایلیمنٹ آف ٹیسٹ از اویلیبل ان لائف ٹو, بیکاز ایوری اسٹیپ آف ون لائف آلسو ریمائنڈ سم آف ہز اون انبلٹی اینڈ پاور لیسنس ایز اگینسٹ اللہ ایبسلیوٹ پاور وچ کریٹس ان ہم دا ٹینڈنسی ٹو ایکٹ رائچسلی. اور لائف کے اندر بھی ٹیسٹ. اب اللہ یہاں پہ وہ جو کمنٹری میں بول رہے ہیں وہ یہ کہ ٹیسٹ از مور امپورٹنٹ اینڈ از آف گریٹر سگنیفیکینس ان ڈیتھ رادر دین ان لائف, لیکن دونوں میں لائف اور ڈیتھ میں وہ ٹیسٹ والا جو مادہ ہے وہ رکھا ہوا ہے. ہاؤ کم کہ جو بار بار ڈیتھ کو یاد کرے گا, جو بار بار ڈیتھ کو یاد کرے گا, آبویسلی ہی ول بی پریپیئرنگ فار دس ٹیسٹ مور اینڈ مور, اور زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن لائف میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو مادہ رکھا ہے. ہاؤ, وین وی فیل, وین وی سفر, وین وی فیل پاورلیس, وین وی آر You know, when life reminds us of our inability to do things, our powerlessness as against Allah's absolute power, it reminds us जब जब लाइफ में हम फेल हो रहे हैं, जब जब लाइफ में हम पावरलेस फील कर रहे हैं, जब जब लाइफ में हम मिस्टेक कर रहे हैं, एयर कर रहे हैं, वट एवर. सो यू नो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ रिमाइंडिंग अस ऑफ आवर स्टेट, आवर एग्जिस्टेंस, कि हाउ पावरलेस वी आर, हाउ हेल्पलेस वी आर, एंड यू नो वॉट वी आर एंटायरली डिपेंडेंट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त. नो सो दैट यू नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस दिन हमको ये टेस्ट पेपर दिया था, उसने ये बता दिया था कि ये टाइम टेस्ट एंड होने वाला है, एंड ही हैज़ गिवन अ सर्टन रिसोर्सेज. उन रिसोर्सेज में अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें दी, कुछ नहीं दी, एंड नाउ दैट यू नो वी आर फॉलिंग शॉर्ट, वी रियलाइज़ कि ओके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं दी, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दी थी. माइट भी कि अभी मैं अल्लाह से मांग लूँ तो वो दे भी दे. दैट एबिलिटी, दैट एजिलिटी, दैट पावर, दैट स्ट्रेंथ और दैट थिंग, अगर अल्लाह ने ये स्पेशल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये स्पेशल कंसेशन रखा है, डिस्काउंट रखा है, या फिर एक व्हाट वी कैन से प्रोविजन रखा है कि तुम मांग लो और मैं दे दूंगा बीच में. ओके स्टार्ट में नहीं दे रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर तुम मांग लो मैं उसको दे दूँ तुमको. सो मे बी तुमको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मे बी तुम्हारे पास कोई नेमत नहीं है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, या फिर औलाद नहीं है, वट एवर. स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला से तुम मांग लो, एंड माइट बी ही ग्रांट्स यू. ही कैन ऑल्सो चेंज योर डिक्री. ऐसा कुछ नहीं कि पहले से लिख दिया गया तो तुमको नहीं मिलेगा. ओके यू आस्क एंड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त विल ग्रांट यू, एंड मे बी इट हैज़ बीन डेस्टिन के तुम्हारा लाइफ पार्टनर इतना ही साथ तुम्हारे रहेगा टेस्ट पेपर में, या तुम्हारे साथ इतने ही लोग, वट एवर इज हैज़ बीन डिक्रीड. लेकिन मे बी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तुम मांग लो और अल्लाह ताला तुमको दे देगा, तो डेस्टिन कुछ और हो सकता है, डिक्रीड कुछ और हो सकता है, लेकिन अल्लाह चाहे तो डिक्री को बदल दे, अल्लाह ताला चाहे तो यू नो ही कैन मेक थिंग्स वर्क. सुभान अल्लाह, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दुआ, वे यू नो द ब्यूटी ऑफ दुआ कम्स, कि इसलिए दुआ क्यों मांगना है हमको और मांगने से क्या होगा. सो नो डाउट द एलिमेंट ऑफ टेस्ट इज अवेलेबल इन लाइफ टू, बिकॉज एवरी स्टेप ऑफ वन्स लाइफ रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ओन इनएबिलिटी, पावरलेसनेस. तो यू नो द ब्यूटी ऑफ फेलियर्स इज दैट दे रिमाइंड अस ऑफ आवर पावरलेसनेस बिफोर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त. हाउ ब्यूटिफुल, एंड इट्स अ टाइम दैट वी टर्न टू हिम, टू वी बीसीक हिम फॉर हिज हेल्प, वी इम्प्लोर हिम कि अल्लाह आई एम फीलिंग पावरलेस, I acknowledge my powerlessness and your might, you are almighty, and I'm, you know, feeling powerless, helpless. Rabbul Izzat, please help me out. Beautiful. The thought of death, however, is most effective in correcting one's conduct. No doubt element of test is available in life too, because every step of one's life reminds him of his own inability and powerlessness as against Allah's absolute power, which creates in him the tendency to act righteously. The thought of death, however, is most effective in correcting one's conduct. Sayyidina Ammar ibn Yasir reports prophetic hadith which says, death is sufficient as a preacher. Certitude is sufficient as a cause of being free from needs. Kafa bil maut wa iza wa kafa bil yaqeen qina. Death is sufficient as a preacher. वाज करने के लिए, नसीहत करने के लिए सिर्फ मौत की याद करना काफ़ी है. एंड सर्टिट्यूड इज सफिशियंट एज अ कॉज ऑफ बींग फ्री फ्राम नीड. गिना, गिना मतलब गिना जो है वो काफ़ी है तुम्हारे लिए. बिल यकीन, वाइज व कफ़ा और काफ़ी है तुम्हारे लिए. बिल यकीन गिना, तुम्हारी नीड्स को फुलफिल करना, तुम्हारी यू नो गिना तुम जब अपना लेते हो, इट्स sufficient as a cause of being free from needs. This signifies that witnessing death of friends, relatives is a most effective preacher. Ibrat lene wala, waaz karne wala, nasihat karne wala, kisi ki maut jo hai, isi liye kaha gaya ki wahan par jao aur wo sare rites and rituals, basically it's an indicator ki wahan se tumko ibrat mil rahi hai, nasihat mil raha hai. It's a beautiful time when a baby is born, when someone dies, it's a beautiful time to reflect, to witness the transition, to witness the transcendence, to witness the miracle of God, to witness this transition of from death to life when a baby is born, and from life to death when a person passes away. So it's basically a mystical beauty to witness the death of friends, relatives, people around us, एंड इट्स द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ रिमाइंडर्स, इफेक्टिव ऑफ प्रीचर्स. कोई इस तरह प्रीच नहीं कर सकता, कोई इस तरह रिमाइंड नहीं कर सकता. हाउ हार्श इज द थिंग कि इवन दो वी आर एक्सपीरियंसिंग इट, वी आर हीडलेस टू इट. अल्लाह हमको हिदायत दे. इट इफ दैट डज नॉट एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन वन, नथिंग एल्स विल, नथिंग एल्स विल. अल्लाह रब, मतलब अगर डेथ, किसी की डेथ, अगर किसी की डेथ एग्जर्ट नहीं कर रही है, इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है ऑन वन, नथिंग विल. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी पावरफुल चीज़ रखी है, इतनी इतना इतनी शिद्दत है उसमें, इतनी पावर है उसमें कि हर किसी को हिला कर मारती है वो, कितना भी संग दिल इंसान हो. अगर ये नहीं इंडिकेट कर रही, लाइफ और डेथ का मकसद ये है कि वो रियलिटी को झिंझोड़ के सामने रख दे कि यू नो वेक अप, दिस इज टेस्ट, वेक अप, दिस इज अ टेस्ट, वेक अप, दिस इज अ टेस्ट. और अगर ये नहीं झिंझोड़ सकती तो फिर नथिंग एल्स विल, फिर क्या ही झिंझोड़ेगा. एंड ही हुम अल्लाह हैज़ ग्रांटेड द वेल्थ ऑफ फेथ एंड सर्टिट्यूड इज अ मोस्ट नीड फ्री पर्सन. अल्लाह ने जिसको गिना, जिसको दौलत अता किया, ईमान की दौलत दी, गिना अता किया, वो सबसे बेनियाज इंसान. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको अता कर मालिक गिना. अल्लाह, या अल्लाह तू गनी है, तू मुगनी है. यू आर द एनरिचर, यू ग्रांट, यू एनरिच हुम एवर यू विश. सैयदना रबी अल-अनस रिज़ियल्लाहु अन्हु स्टेटेड दैट द थॉट ऑफ डेथ मेक्स मैन डिसगस्टेड विद दिस वर्ल्ड एंड मेक्स हिम इंक्लाइन टुवर्ड्स हियरआफ्टर. ऑटोमेटिकली थॉट ऑफ डेथ जो है वो इंसान को बेरगबती पैदा कर देता है दुनिया से, दुनिया से, एज इफ कि ये तो इसका मकसद ही नहीं है, इट्स इट्स लाइक नथिंग. एंड इमीडिएटली द मैन गेट्स इंक्लाइन टुवर्ड्स हियरआफ्टर. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سو دیٹ ہی مے ٹیسٹ یو ایز ٹو وچ آف یو از بیٹر. ان ڈیڈ اٹ شوڈ بی نوٹڈ ہیئر دیٹ اللہ ڈڈ ناٹ سے وچ آف یو ڈز مور ڈیڈز بٹ سیڈ وچ آف یو از بیٹر ان ڈیڈز. کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے؟ نہیں, کون بہتر عمل کر کے آتا ہے؟ دس انڈیکیٹ اٹس ناٹ دا کوانٹٹی آف ایکشن دیٹ کاؤنٹ بٹ رادر دا کوالٹی آف ایکشن. کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے, تم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو, تم کتنا خیرات کر رہے ہو, تم کیا کتنا 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 کر رہے, ڈزنٹ میٹر. دن میں سے ایچ اینڈ ایوری ڈے تم کیا کوالٹی کر رہے ہو, تم بات کر رہے ہو کس کوالٹی کی کر رہے ہو, تم یو نو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو, نیروز ڈاؤن ٹو مائنڈ فلنس, ہاؤ مائنڈ فل یو آر آف اللہ. تم نے زکوٰۃ دی, تم نے خیرات کی, تم نے نماز پڑھی, تم نے بات کیا, تم نے لوگوں سے ڈیل کیا, اینڈ یو نو میجورٹی میجورٹی آف دا تھنگز میں تم نے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے تم نے کتنا عمل کیا. ہاؤ کوڈ یو پرفارم, پرفارمنس لیول تمہارا انڈیکیٹر 0 to 10 میں کتنا پڑ رہا ہے, ویدر اٹ بی نماز, ویدر اٹ بی ڈیلنگ ود پیپل, ویدر اٹ بی یور ہیلتھ, ویدر اٹ بی ایٹنگ, ویدر اٹ بی واچنگ سم تھنگ, ایوری تھنگ. تو اٹس ناٹ دا کوانٹٹی آف ڈیڈس بٹ دا کوالٹی آف ڈیڈس دیٹ میٹر. اٹس ناٹ دا آؤٹ کم دیٹ میٹرز, اٹس دا ایفرٹس, رائٹ. تم نے تمہارا آؤٹ کم کیا نکلا, یا ہاؤ یو ریئیکٹ, ہاؤ یو رسپونڈ ایکچولی میٹرز. This indicate that it's not quantity of action that count but the quality, that is their being righteous, acceptable in the sight of Allah. مطلب وہ قبول ہو رہے کہ اللہ کی راہ میں تم نے اٹھے, نماز پڑھے, لپیٹ لیا نماز کو, is it being acceptable by Allah رب العزت. اللہ نے کیا اس کو قبول کیا بھی ہے, تم نے کوئی کام کیا ہے. You are being conscious of yourself in marriage, you are being conscious of yourself in striving, you are doing something. وہ تمہارا کانشیسنیس, وہ مائنڈ فلنیس ہی تمہاری رگ ہے, بلڈ دیٹس کیپنگ یو الائیو. وین اٹ ڈائز, وہ حس مر گئی, وہ سینس مر گیا, یو نو دا ریممبرنس, دا بیوٹی آف وہ لقمہ جب تم منہ میں ڈال رہے ہو, اینڈ دا ریممبرنس آف بسم اللہ اینڈ بینگ گریٹفل ٹو اللہ فار ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیز گرانٹیڈ, اٹ از ان ایکچوئل دا تھنگ دیٹ کیپس یو موونگ. وہ آزمائشوں کا, وہ چیلنجز کا ہونا ایز شارکس ان دا اوشن دیٹ کیپس دا فش الائیو. سوئمنگ ود دا شارکس کیپس یو الائیو, سوئمنگ ود دا شارکس کیپ یو ہیل اینڈ ہارٹی, سوئمنگ ود چیلنجز, سوئمنگ اوور کمنگ, یو نو سرفنگ اوور دا ٹائڈز آف چیلنجز از واٹ کیپس یو الائیو. اینڈ اللہ رب العزت یہ تمام چیزوں میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہے, ہو از بیٹر ان ڈیڈس, کون بہتر عمل کر کے آ رہا ہے. دو لوگوں کو سیم سچویشن ملی تھی, چار لوگوں کو سیم سچویشن ملی تھی, بہتر عمل کر کے کون آیا, फैमिली मेम्बर्स बकवास मिले थे, कभी ऐसा मिला था या किसी को ये ये नहीं मिला, किसी को वो मिला, किसी को ये चीज़ें मिली, किसी हर किसी का जो लड्डू का डब्बा है, मिठाई का डब्बा है, डिफरेंट है, डिफरेंट वर्जन है. अल्लाह ने किसी को लड्डू दिए, किसी को गुलाब जामुन, किसी को यू नो दैट थिंग. अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग दिए ना, उसमें तुमने क्या करके आए, वट डिड यू डू, ये पूछेगा अल्लाह था, तुम क्या करके आए हो, नॉट दैट कौन क्या कर रहा था तुम्हारे अराउंड. हाउ डज इट इवन मैटर कौन क्या कर रहा था तुम्हारे बाजू, तुम्हारे अतराफ में, तुम्हारे साथ फॉर द एंटायर लाइफ. इट डोंट, इट डजेंट मैटर इन द लीस्ट तुम क्या करके आए हो, तुम क्या करके, हु इज बेटर इन डीड्स मैटर्स. इवन दो यू माइट बी इन द सिमिलर सिचुएशन, यू माइट बी इन द सेम सिचुएशन, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम प्रैक्टिकल, सेम एग्जाम, तुम क्या कर रहे थे वो मैटर कर रहा है. हाउ मच यू हैव endured, how much you have strived, how much you have taken efforts to make this work, to make it work. आखिरी में एंड प्रोडक्ट क्या निकला तुम्हारा, तुमने प्रोडक्ट के ऊपर कितनी मेहनत की, प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था, हाउ मच हैव यू इन्वेस्टेड. तो वो एग्जामिनर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखता, इवन इफ द प्रोडक्ट फेल्स ही नोज वॉट यू हैव बीन डूइंग द एंटायर टाइम. एंड इट्स नॉट दैट कोई तो भी आकर निकल गया प्रोडक्ट जनरेट कर गया, नो नो नो. अल्लाह रब्बुल इज्जत भी एक छोटे से मामूली एग्जाम में, हम बीइंग एन एग्जाम है ना, हम ये देखते हैं कि ओवरऑल तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या था. सिमिलरली अल्लाह रब्बुल इज्जत विल बी सीइंग कौन बेहतर अमल करके आ रहा है ओवरऑल, ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी डे थ्रू आउट लाइफ, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, वे यू माइंडफुल ऑफ हिम. जब तुम बात कर रहे थे किस तरह बात कर रहे थे, जिस व्हेन यू आर ट्रीटिंग पीपल, हाउ आर यू ट्रीटिंग पीपल, मामलात कर रहे थे जब, यू नो एवरीथिंग. So I think so that is the most beautiful part, जहाँ empathy, compassion, mercy, forgiveness, ये वाली चीज़ें आती हैं. And अल्लाह ताला क्योंकि देख रहा है how am I performing, it's not that कि यार you know I could have taken revenge, I could have done this, लेकिन अल्लाह देख रहा है ना मुझको, अल्लाह ताला is you know I'm in a practical, मैं you know ठीक है जो भी लोग कर रहे हैं, अल्लाह is watching, अल्लाह देख रहा है, and अल्लाह ताला मुझको भी तो देख रहा है. If I'm gossiping, if I'm doing something, Allah mujhko dekh raha hai. Subhanallah. So that's the thing that is, you know, kaun behtar amal karke. This indicate that it's not the quantity of action that count, rather the quality of action, that is, that being righteous, acceptable in the sight of Allah. That is why man's action will not be counted on the day of judgment, but they will be weighed. Gine nahi jayenge, wazan kiya jayenga. Subhanallah. In some instance, the weight of one action would be heavier than 1,000 actions. Subhanallah. तो इसीलिए कहा गया कि गिने नहीं जाएंगे कितने नेकियां करके आए, आमाल का वज़न देखा जाएगा, किसका पर्दा भारी है, जिसका पर्दा भारी है वो वाह वो कामयाब हो गया नेकियों का पर्दा, और जिसका गुनाहों का पर्दा भारी हो गया वो बर्बाद हो गया. तो यहाँ वज़न हो रहा है, गिने नहीं जा रहे, देयर इज़ नो मेजरिंग स्केल, स्केल भी नहीं लगाई जा रही. यहाँ पर करेंसी क्या है, यहाँ पर वेइंग स्केल क्या है, स्केल्स है, मेजरमेंट है, तराजू में तोला जा रहा है, वेट किया जा रहा है किलो के माप से कि वज़न कितना है अमल का. एक नमाज थी, एक नमाज थी दो रकात, वो हज़ार नमाजों के ऊपर फजीलत ले गई, या एक दुआ थी जो हज़ारों दुआओं के ऊपर फजीलत है, एक रुपया तुमने जो डोनेट किया था, या एक अदा, एक ऐसा कोई अमल वी डोंट नो, उसका वेट इतना भारी हो जाएगा, इतना आउट वे हो जाएगी वो चीज़, इट विल बी हैवियर देन 1,000 एक्शंस. एक ऐसा अमल रहेगा माइट बी कि बहुत अदना सा हो, बड़ा सा, वी नेवर नो, इतना वज़नदार हो जाएगा वो, इतना वज़नदार रहेगा वो कि इट विल बी लाइक, इट विल बी 1,000 टाइम्स. एंड माइट बी कि खुदा न खास्ता एक बुरा अमल भी उतना ही वेटी हो, उतना ही वज़नदार हो जाए, इट माइट बी मोर देन वॉट वी अज्यूम. हमको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसका वज़न क्या था, हमने किसी को ताना मारा, किसी का दिल दुखाया, किसी को यू नो वी सेट समथिंग, या किसी की बैट स्टैबिंग किया, वट एवर, या किसी के झगड़े में तेल डाल दिया, या वी कॉज्ड कन्फ्लिक्ट और हम उसके ज़रिया बन गए, ना अल्लाह ना करे. एंड यू नो इट सीम्ड वेरी ट्रिवियल, इट सीम वेरी ट्रिफल, लेकिन वो उतना बड़ा हो गया कि उसका वेट इज़ लाइक अ 1,000 टाइम्स. और वो नेकियाँ हमारी चुल्लू भर नेकियाँ, और एक तरफ वो तो यू नो हाउ विल बैलेंस, इसीलिए कहा गया कि वो बैलेंस स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसाब का दिन, जिस दिन हिसाब कायम होगा, द डे ऑफ जजमेंट, एंड अल्लाह विल बी अदल, हक, अल्लाह अदल करने वाला है, हकम है, हाकिम है, ही इज़ अ मोस्ट जस्ट ऑलवेज, लेकिन उस दिन उससे बेहतर अदल करने वाला और कोई नहीं रहेगा, मतलब ही विल बी द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, कि ही विल लीव थिंग्स आउट टू यू, ओके जहाँ तक मेरे हकूक़ की बात है वहाँ पे कुछ बात हो सकती है, यू नो वहाँ पे मैं गफूर रहीम हूँ या अल्लाह ताला, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में सब चीज़ें हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीपल, कि ये जो कहा गया कि वो बकरी को छोड़ दिया जाएगा, वो आपस में लड़ लें, वो अपना हिसाब चुकता कर लें, वट इफ़ वी आर लेफ्ट टू पीपल, जो दुनिया में बदल जा रहा है कि वी इफ़ वट इफ़ वी आर लेफ्ट टू पीपल एंड यू नो वहाँ हार गए, खुदा ना अल्लाह ना करे, हमको लग रहा कि हम बहुत निकियाँ करके गए थे, यू नो बट वी फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग, वहाँ पे कोई एक ऐसी बुराई जो थी हमको लगा नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएंगी, इट वाज वेरी ट्रिवियल थिंग, उसकी कोई औकात ही नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, एंड कुड वी थॉट कि यार ये क्या अमल है, थोड़ा सा तो था, कि वो इतना इतना तूल ले गया, इतनी बड़ी हो जाएगी, इतना वजन अपना लेगा आखिरत के दिन, वी कुड नेवर नो, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हासिबनी हिसाम यसीरा, सो ज़रा बराबर निकी वो देख लेगा, ज़रा बराबर बुराई वो देख लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्लीज़ हेल्प अस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्लीज़ हेल्प अस स्टे ऑन द राइट पाथ, अल्लाह हमारी नेकियों में वजन पैदा कर दे, अल्लाह हमारी बुराइयों को खोखला कर दे, रेडिकेट दैम, इरेज दैम, अल्लाह डिस्टेंस मी फ्रॉम माई सिंस एज यू डिस्टेंस द ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम बिहाइंड ऑन माई राइट ऑन माई लेफ्ट फ्रॉम अबव लेस्ट आई बी स्वॉलोड अबाउट What is good action? Sayyidina Ibn Umar Astalanu said, Once Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam recited the verse and when he reached the word better indeed, he stopped and explained the better indeed is the one person who abstains most from the things Allah has forbidden is always ready to obey him. Allah ki itaat ke liye hamesha ready. Aur jo jitni taqriban cheeze hain jisko Allah ne mana kiya, Allah jise naraaz ho jata wo bach jata hai because we never know what could be the thing jisse Allah Rabbul Izzat humse naraaz ho jaye. What could be the thing so weighty in scale, so outweighed, इतना वज़न अख्तियार कर लें वो, खुदा ना खास्त, अल्लाह ना करे आखिरत में हमारे तराजू में, कि यू नो इट काइंड ऑफ जिसको हम बहुत मामूली समझ रहे थे वो उस दिन बड़ा वेट ना, एंड यू नो स्पेशली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चीज़ों से अल्लाह नापसंद करता है, रियाकारी है, एरोगेंस है, दिखावा है, या फिर अपने आप को बड़ा समझना, यू नो दीज ऑल थिंग्स, हमको लग रहा था ये छोटी हासा जलन, कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत हमको लगता है छोटी है, और पता नहीं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमको लगता है बहुत छोटी है, लेकिन उससे बच जाओ बिकॉज यू डोंट नो यार कि वो वज़न में उस दिन क्या रखेगी वेट, एंड उसी तरह कुछ नेकियाँ ऐसी है जो बहुत छोटी लग रही होगी, एक रुपया क्या दूँ मैं किसी को, यू नो किसी से मुस्कुरा के बात कर लेना, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे देना, यू नो इट्स साउंड सो ट्रिवियल, इतनी बकवास लगता है वो कि अरे यार ये भी कोई करने का काम है, बट वी नेवर नो कि वो आखिरत में हाउ इट टर्न्स आउट टू बी, तुमने किसी को मुस्कुरा के देख लिया, इट वॉज़ अ वर्स्ट डे ऑफ हिज लाइफ, ही वॉज अटेम्प्टिंग सुसाइड और समथिंग, और तुम्हारी मुस्कुराहट से वो रुक गए या समथिंग लाइक दैट, वी नेवर नो, तो वी नेवर नो कि वो एक अदा हमारी है, एक हमारा एक्ट हमारा क्या कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा भी उसकी वसत और उसका वेट, उसका वज़न आखिरत में क्या रहता है, अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमामीन, हमारे अमल को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, आमीन सुमामीन।